नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले एपिसोड में डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ चर्चा की तनाव के विषय में। तनाव क्या होता है, तनाव के कारण क्या होते हैं और तनाव किस तरह हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। तो आज हमने अपने स्टूडियो में फिर आमंत्रित किया है डॉक्टर गिरीश पटेल को, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट है और एक मेडिटेशन एक्सपर्ट है, और हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ तनाव के कुछ ऐसे ही नए एस्पेक्ट्स के बारे में। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि तनाव जो है ये हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, मन पर प्रभाव डालता है, ये तो हमारे समक्ष बिल्कुल स्पष्ट है, पर किस तरह डालता है ये एक प्रश्न जो है, ये अगर हमारे सामने क्लैरिफाई हमारे दर्शक समझ पाए इसको, तो शायद उनके अंदर मोटिवेशन होगी कि तनाव को अपने अंदर से भगाया जाए।
मतलब आप चाहते हैं कि मैकेनिज्म्स
ऑफ स्ट्रेस,
अलग अलग रीति से इसको हम समझा सकते हैं। अगर बहुत सरल भाषा में आम व्यक्ति को भी समझाना हो तो शरीर में हमारी दो प्रकार की प्रणाली है। एक तो प्रणाली है जो हमारे नियंत्रण में है, जिसको वॉलेंटरी सिस्टम कहेंगे, कि हाथ पैर को ऊपर नीचे करना वह हमारे नियंत्रण में है। और दूसरी प्रणाली है जिसको कहते हैं इनवॉलेंटरी सिस्टम, जैसे कि पाचन क्रिया, हृदय की गति, किडनी का फंक्शन, कि जो आप सो गए तब भी वह चलता ही रहता है, तो वह एक दूसरी प्रणाली है
जी।
तो तनाव का सबसे बड़ा प्रभाव यह जो इनवॉलेंटरी सिस्टम है उस पर पड़ता है
जी।
और उसकी जो क्रियाएं हैं उसको भी हम दो रूप से समझ सकते हैं। एक तो ये जो आंतरिक अवयव है वह संतुलित रूप से कार्य करने चाहिए
जी।
समस्या तब होती है जब उसमें असंतुलन आता है। तो हमारे शरीर में उससे संतुलन निर्माण करने के लिए एक प्रणाली है जिसको कहा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब सिंपल भाषा में कि भी ऑटोमेटिक वो काम करती है, इसके कारण कहा ऑटोनॉमिक। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो तराजू की तरह है, जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं ऐसे उसमें भी दो पलड़े हैं, या तो कहेंगे दो स्विच है
जी।
जैसे एक स्विच को अगर आप प्रेस करो तो एक प्रकार की सारी गतिविधियां होगी, जैसे कि हृदय की गति बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एसिड ज्यादा निर्माण होने लगेगा, डाइजेशन बंद हो जाएगा, यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा, ऐसे सारी क्रियाएं होगी कि जिसको सिंपैथेटिक सिस्टम कहा। हाँ, वास्तव में उसको कहा सिंपैथेटिक लेकिन वो अनसिंपैथेटिक है, वो बहुत सारी बीमारियां करती है। और दूसरी है जिसको कहा पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, वो उसको बैलेंस करने के लिए है, कि अगर वो थोड़ी सी ज्यादा कार्य करे तो हृदय की गति कम होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा, डाइजेशन आपका ठीक से होने लगेगा, ऐसे जो सारी विपरीत क्रियाएं वह होगी। और तनाव से सबसे बड़ी बात यह संतुलन है वह बिगड़ जाता है।
तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि शरीर भी एक गाड़ी की तरह है, जो प्रक्रिया है
हाँ जी,
उसमें एक्सेलरेटर भी है और ब्रेक भी है। तो एक प्रणाली जो है वो एक्सेलरेटर की तरह काम कर रही है, बढ़ा रही है, और दूसरी प्रणाली जो है वो ब्रेक की तरह काम कर रही है
अपने,
और जो इसको हम कहें वो बैलेंस है, एक अच्छा ड्राइवर जो है वो बैलेंस मेंटेन करेगा, और तनाव जो है वो इसमें बैलेंस को बिगाड़ देता है, कभी एक्सेलरेटर को दबा देगा या कभी ब्रेक को कर देगा।
परफेक्ट आपने उदाहरण दिया कि भी वर्तमान 21वीं सदी में हमारा पैर सारा समय एक्सेलरेटर पर है,
सब
ब्रेक लगाना भूल गए, समझो कि ब्रेक फेल हो गई है।
और एक अच्छा ड्राइवर वो होता है जिसे एक्सेलरेटर और ब्रेक का बैलेंस
रखना होता है, और ये भी ना हो कि ब्रेक फेल हो गई तो एक्सीडेंट होना ही
होना है।
आज ऐसी स्थिति हो
तो
गई,
तनाव जो है वो इस बैलेंस को खराब।
एक ईयर जो मैकेनिज्म आपने पूछा, दूसरी एक बहुत ही अच्छी सूक्ष्म मैकेनिज्म है। आपने भी सुना होगा कि हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथियां, जैसे गले में थायराइड की ग्रंथि, उसके बाजू में छोटी सी पैराथायराइड की ग्रंथि है, या मस्तिष्क में पिट्यूटरी की ग्रंथि है।
मैं समझता हूं हमारे दर्शक भी जानते ही हैं, थायराइड तो सबको मालूम है यहां पर होता है, पिट्यूटरी यहां पर होता है,
ये बीमारी थायराइड की बीमारी जो बहुत हो जाती है, इसके कारण सभी जानते हैं। आज डायबिटीज की बीमारी इतनी फैल रही है, तो पेनक्रियास की जो पूंछ है वो पूंछ से इंसुलिन निर्माण होता है, ऐसे हमारी किडनी के ऊपर दो एड्रिनल ग्लैंड्स है कि जो भी एक पावरफुल हॉर्मोन्स निर्माण करती है, पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज, वो भी अलग अलग ऐसे रसायन निर्माण करते हैं जो सीधे खून में चले जाते हैं, और इसका संतुलन बहुत जरूरी है
जी।
यह जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको ऑर्केस्ट्रा के साथ भी तुलना की गई, कि ऑर्केस्ट्रा में एक इंस्ट्रूमेंट में भी थोड़ा भी आगे पीछे हो तो सारा ऑर्केस्ट्रा का मजा खत्म हो जाएगा। तो जब थोड़ा भी तनाव होता है, नहीं, थोड़े भी आप निराश हुए, थोड़ा भी आपको अनप्लेजेंट फीलिंग हुई कि भी अच्छा नहीं हुआ ऐसा आपको लगा, तो तब भी असंतुलन शुरू हो जाता है। और वो असंतुलन के कारण अनेक अनेक बीमारियां है, वह बीमारियां हमको हो सकती है। और एक सूक्ष्म मैकेनिज्म है कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम नए नए केमिकल्स को जान पाते हैं
जी।
हाँ, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जब मैं पढ़ रहा था तब हमने पढ़ा था कि दिमाग करीब 50 केमिकल्स निर्माण करता है, लेकिन फिर 1993 में जब मैं और एक किताब पढ़ने लगा तो उसमें आया कि दिमाग तो 300 केमिकल निर्माण करता है, और 2000 में फिर एक स्टडी फिर से पढ़ी तो उसमें आया कि दिमाग 800 से ज्यादा केमिकल निर्माण। इसका मतलब कि नए जो सूक्ष्म सूक्ष्म रसायन है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को साइंटिस्ट पहचान पा रहे हैं, और उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है
जी।
थोड़ा सा भी अंदर में हमें चिंता हो, टेंशन हो, और कोई बात है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को बिगाड़ देता है, और उससे अनेकानेक जो शारीरिक बीमारियां हैं वह भी आगे चल के हो सकती है
जी। ये तो आपने जैसे बताया, इसको हम एक आम व्यक्ति के लिए बताया जाए कि एक ऑर्केस्ट्रा है, तो हमारा जो मन है वो उसका कंट्रोलर है।
हाँ,
उसमें दिखाते हैं
मास्टर करके है।
मास्टर करके वो ऑर्केस्ट्रा बजवा रहा होता है, तो कहां पर भी हमारा मन का कंट्रोल वो बिगड़ जाए, एक तनाव अगर मन में आ जाए तो ट्यूनिंग जो है वो खराब हो जाती है, और अलग अलग ग्रंथ जो है अलग अलग राग बजा रहे होते हैं, और बॉडी का जो सिस्टम है पूरा डिसऑर्गेनाइज हो जाता है।
बहुत अच्छा आपने समझाया कि वो मास्टर ने जो सिग्नल दिया कहीं भी गड़बड़ हो गई तो पिकअप नहीं करेंगे।
बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये बताइए, जो ये तनाव है क्या ये हमारे बॉडी पर प्रभाव डालता है? इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी, अलग अलग ग्रंथों पर, अलग अलग प्रणालियों पर डालता है प्रभाव। क्या इससे सडन डेथ भी हो सकती है, अचानक मृत्यु?
नहीं, कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिसमें अचानक डेथ भी हो सकती है।
अचानक?
हाँ, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, और ये पावरफुल है कि जिससे हम ये समझ पाएंगे कि मन कितना इम्पोर्टेंट है। अफ्रीका के कुछ इलाकों में ऐसी मान्यता है कि जंगली मुर्गी का मांस खाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो एक व्यक्ति अपने मित्र के पास गया, उसने उसे कहा कि तू जंगली मुर्गी का मांस खाएगा? तो कहते हे, तुझे पता नहीं है इसमें तो श्राप होता है, ऐसा मांस खाने से व्यक्ति मर सकता है। तो मित्र जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते उसने कहा कि बुद्धू, एक साल पहले तू मेरे पास आया था, तब मैंने तुझे यही मांस खिलाया था, बड़े मजे से तू खा गया था, और अभी कहता है कि इसमें श्राप होता है। जैसे उसने ये सुना वह कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया, चार पांच मिनट में तो उसकी मृत्यु हो गई। तो किसने उसको मारा? मन ने मारा, उसकी मान्यता ने मारा। अगर सचमुच उसमें श्राप होता तो एक साल पहले मरना चाहिए था
जी।
इसके लिए साइंटिस्टों ने विशेष नाम भी दिया जिसको कहते वूडू डेथ, जादू टोना भी होता है भी, किसने मुझे जादू किया तो मेरी मृत्यु हो गई। तो ऐसे इसे वूडू डेथ भी कहा गया है
जी। इसको डॉक्टर साहब मैं भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल मुझे याद आती है कि कई अभी साइंस ने क्लियर दिखाया है कि एक्यूट जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, एक्यूट तनाव की जो सिचुएशंस होती हैं, उसमें हार्ट है उसका सडन डायलिटेशन हो जाता है, जिसे कहा जाता है कि बलूनिंग सिंड्रोम, जिसे कहा जाता है कि हार्ट की बलूनिंग हो जाती है, बलूनिंग सिंड्रोम। इसको टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी भी कहा गया है टेक्निकल लैंग्वेज में। और इस सडन स्ट्रेस से, ऐसी डायलिटेशन होने से व्यक्ति की सडन डेथ भी हो जाती है, और अगर व्यक्ति इससे कूप अप कर पाता है तो रिवर्सिबल भी होता है। तो ये तो मैं मानता हूं कि साइंस सब क्लियर प्रूव कर चुके हैं कि तनाव अटमोस्ट इफेक्ट यानी सडन मृत्यु भी व्यक्ति के अंदर ला सकती है, और ये एकदम रोंटे खड़े कर देने वाली बात है कि कितना जरूरी है मन को कंट्रोल करना।
बिल्कुल, बस इन बातों को जब हम पढ़ते भी है तो ये सोचना चाहिए कि भी सचमुच थोड़ा सा भी तनाव ना हो,
थोड़ा सा
इसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना है।
और सब मन की बात है, अपने मन को कैसे पावरफुल बना जाए, क्योंकि तनाव हमेशा परिस्थिति जैसे आती है बाहर से, तो स्वस्थिति जैसे हमने बात किया था, अगर हमारी अपनी स्टेज पावरफुल हो तो ऑटोमेटिकली हम तनाव से बच सकते हैं, उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि एक अमीर व्यक्ति है उसके पास तनाव होता है, क्या आप समझते हैं गरीबी भी एक प्रकार का तनाव है?
अच्छा, एक देखेंगे तो भी परिस्थिति है। गरीबी वह डिफिकल्ट सिचुएशन है
जी।
मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि गरीबी को हम तनाव ना कहे, उसको कहे कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन है। अब उसके साथ आप कैसे डील करते हो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल मेरा अपना देखा हुआ ये एग्जांपल है
जी।
कि बंबई में दो भाई थे, एक भाई बहुत पैसे वाला था, एक भाई गरीब था। जो पैसे वाला भाई था वो हाई राइज बिल्डिंग में रहता था
जी।
जो गरीब भाई था वो छोटी सी चौल में रहता था। इस गरीब भाई के तीन बच्चे थे, तो तीनों की गरीबी के प्रति प्रतिक्रिया एकदम भिन्न होती थी
जी।
जो सबसे बड़ा था वो तो माता पिता को गालियां देता था कि भी जन्म क्यों दिया अगर आप हमको अच्छी तरह से पाल नहीं पाते थे, वो साइकोपैथ था। जो सबसे छोटा था वो सोचता था कि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है तो मैं क्या जीवन में करूंगा, तो वो कुछ पढ़ नहीं पाया। लेकिन जो बीच वाला था वो रात दिन पढ़ता था, जब और बच्चे खेलते थे तब भी वो पढ़ता था। जब और बच्चे पिकनिक पे जाएंगे तो वो पढ़ता था। आखिरी वह सर्जन बना और आज न्यूयॉर्क में सेटल्ड है। एक बार उसे ओरेशन अवार्ड मिल रहा था, तो तब ये मौका होता है जब ओरेशन अवार्ड मिलता है कि आप अपने जीवन के बारे में भी 2-3 मिनट बोल सकते हैं। तो तब उसने ये बात कही कि मैं इतना बड़ा सर्जन क्यों बना, क्योंकि मेरे माता पिता गरीब थे। अगर मेरे माता पिता पैसे वाले होते तो मैं भी शायद और चीजों में रुचि लेता और इतना अच्छा डॉक्टर नहीं बनता। तो इससे मैं ये बात स्पष्ट करता हूं कि गरीबी तनाव नहीं है। उस गरीबी में आप क्या करते वो इम्पोर्टेंट है। कहते कि आपके जीवन में क्या होता है वह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उस परिस्थिति में आप क्या करते,
मतलब आप किसी भी सिचुएशन को परसीव कैसे करते
हैं
या उसका अपने ऊपर किस प्रकार का प्रभाव होने देते हैं,
वो एक बात है
जी।
वो दूसरा कि भी उस परिस्थिति में इंग्लिश में अच्छा कह सकता हूं, कहते कि भी व्हाट हैपन्स टू इज नॉट इम्पोर्टेंट बट व्हाट यू डू विथ व्हाट हैपन्स टू इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
क्या करते हैं अपने साथ जो आपको हो रहा है।
ये भी बहुत एक अच्छा कहा गया है कि भी आपके बाहर क्या है, आपके पीछे क्या है, नहीं आपके फ्रंट में क्या है, आपके बैक में क्या है वह महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अंदर क्या है वह सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपके कंट्रोल में है।
अब इतनी जब हम बात कर लेते हैं कि हमारे अंदर जो हमारे मूल तत्व हैं, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वह कितना पावरफुल है, तो एक प्रश्न जो मेरे मन में उठता है, मैं समझता हूं हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि तनाव के बारे में ये सब जानने के बाद क्या तनाव से मुक्त होना सहज है।
ये तो मैं कहूंगा कि भी सहज नहीं है परंतु संभव जरूर है। नहीं, लोग तो ये कहते संभव ही नहीं। आप अगर एक्सपर्ट्स को भी देखो, कहीं अगर कहीं बार आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स भी अटेंड करो तो वो यही कहेंगे कि भाई स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं लेकिन वो जीवन भर आपके साथ रहने वाला है।
मैं आपसे एक बात अक्सर यहां पर पूछना चाहूंगा कि मुश्किल और संभव, संभव में भी एक ग्रेडेशन आ जाती है, रिमोट पॉसिबिलिटी या बहुत डिफिकल्ट पॉसिबिलिटी है। आप 30 साल से मेडिटेशन करते रहे, एक मेडिटेशन एक्सपर्ट माने जाते हैं, फेमस साइकोथेरेपिस्ट है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके अपने एक्सपीरियंस में अगर एक व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपके समक्ष आए तो क्या आप समझते हैं कि जिस प्रकार की मेडिटेशन या प्रिंसिपल्स आप प्रैक्टिस करते हैं उससे आप आसानी से तनाव से मुक्त नहीं तो काफी हद तक अपने जीवन को बैलेंस बना सकते हैं।
बिल्कुल, जो आपने ये बात बताई वो तो 100% पॉसिबल है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया
जी। बिल्कुल, क्योंकि आम व्यक्ति जो देख रहा होगा, मैं नहीं समझता कि हर व्यक्ति के पास इतना समय होगा और वो चाहेंगे एक सिंपल टेक्निक, एक बेसिक ऐसे प्रिंसिपल जिससे उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाए।
नहीं तो बिल्कुल है ना, ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है,
डिफिकल्ट
एकदम सहज नहीं है, परंतु थोड़ा भी पुरुषार्थ करो। आप अगर रोज आधा घंटा भी अपने आप के लिए देने लगो और कुछ ऐसी बातों को समझ लो कि स्ट्रेस को किस प्रकार से सही मैनेज करना है, बस समस्या तो आएगी ही, परंतु बस वो आपके पास अगर फंडामेंटल स्टेप्स भी है और उसका सही समय पर सही रूप से उपयोग करने लगो तो सचमुच तनाव मुक्त भी हो सकते हैं।
तो नेचुरली डॉक्टर बाबा आपने ये बताया तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेस रिलीविंग आप किन्हें मानते हैं? एक आम व्यक्ति के लिए जो जी रहा है, या आप कहो कि आज हम सब लोग एक्सेलेटर दबाए चले जा रहे हैं, तो उस एक्सेलेटर में से कौन कौन से ब्रेक्स आप बताना चाहेंगे या किस तरह आप क्लच ब्रेक और पैडल का बैलेंस बताना चाहेंगे कि हम सब लोग एक अच्छे ड्राइवर बन जाए, हमारा मन जो है इस शरीर को चलाने वाला एक अच्छा ड्राइवर बन जाए, हमारी जो साइकी है, हमारी जो बीइंग है वो एक अच्छा ड्राइवर बन जाए।
अगर बेसिक और सिंपल स्टेप्स देखने हो, जैसे आपने कहा कि इजीली हो, तो मैं बताता हूं कि पांच सीज को अपनाओ,
फाइव सी
से स्टार्ट होने वाली बातें हैं। पहली तो है चैलेंज, दूसरा है कंट्रोल, तीसरा है कम्युनिकेट, चौथा है कोऑपरेट और पांचवा है कॉन्सेंट्रेट। बस ये पांच में से जो भी बात संभव हो, पांचों संभव नहीं हो सकती एक परिस्थिति में, लेकिन जो भी दो या तीन बातें आपके लिए संभव है वो आप करो तो आराम से आप इस पर विजय प्राप्त।
एक बात तो है कि अगर आप एक भी बात अपनाते हैं तो बाकी बातें ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी साथ में।
ये भी है कि एक करेंगे तो
मैंने देखा कि एक अच्छे थॉट के साथ, एक अच्छे स्टेप के साथ एक चेन रिएक्शन हो जाता है। तो इनका स्पष्टीकरण हम आपसे जरूर चाहेंगे। आपने बोला सबसे पहले चैलेंज,
तो ये जो पहली बात जरूरी है कि हम अधिकतर परिस्थिति से दूर भागते। जब भी समस्या आती है तो सोचते इसको अवॉइड करे, आए ही नहीं, परंतु कभी भी इसे अवॉइड नहीं करो, क्योंकि वर्तमान कंपटीशन का युग है
जी।
आप अवॉइड करने लगेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और इसके लिए बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण स्वामी विवेकानंद का है
जी।
कहते हैं कि पहली बार जब विवेकानंद बनारस में गए तो वहां के कुत्तों ने जब देखा कि अजीब सा व्यक्ति यहां बनारस में आ गया है, तो कुत्ते उनके पीछे भागने लगे, वो भी भागने लगे, वो आगे भाग रहे, कुत्ते पीछे भाग रहे। गली के एक कोने पे जब वो टर्न ले रहे थे, एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, नौजवान रुक जाओ, तो रुक गए। फिर कहा, नौजवान कुत्तों को देखने लगो, तो कुत्तों को देखने, जैसे वो कुत्तों को देखने लगे कुत्ते भी रुक गए। देखते गए तो कुत्ते पूछ हिल हिलाते वापस चले गए। तो विवेकानंद लिखते हैं कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक था कि समस्या से दूर नहीं भागना है, उसका सामना करना है। और जब चैलेंज के रूप में आप परिस्थिति को लेते हैं तो आपकी कैपेसिटी भी बहुत बढ़ जाती है।
बिल्कुल, क्योंकि अगर हम किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैं सोचता हूं हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस की तरफ आने लग जाता है
और एनर्जी भी बढ़ती है,
एनर्जी लेवल।
जैसे हम दूर भागते हैं तो समस्या के कई पहलू है, जैसे एक एक समस्या के पांच पहलू है। अगर मैं इससे डरता हूं तो दो तीन का सामना कर सकूंगा, दूसरों का नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं चैलेंज के रूप में लेता हूं तो पांचों को अच्छे से मैनेज कर पाता हूं, तो इसके कारण बहुत बड़ा फायदा होता है। और चैलेंज के रूप में लेना हो तो मैं हमेशा कहता हूं कि इन तीन शब्दों को याद रखो तो ऑटोमेटिक वह बात आ जाएगी। वह तीन शब्द है, फेस इट, फाइट इट एंड फिनिश इट।
फेस, फाइट एंड फिनिश,
कि सामना करो, उसके साथ लड़ो और उसे हरा दो।
और वैसे भी मैंने देखा है कि भगवान कहता है कि अगर आप हिम्मत करते हो तो भगवान स्वयं ही आपको उस कार्य के लिए, खत्म करने के लिए, उसको फेस करने के लिए ताकत देता है। और यदि हम कह दें कि मैं ये नहीं कर सकता तो ऑटोमेटिकली शरीर निढाल, मन बिल्कुल खत्म हो जाता है और हम लोग भागने की कोशिश करते हैं।
बस, तो वही है कि एक कदम ही उठाने की जरूरत है,
एक कदम उठाने
चैलेंज के रूप में।
कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अपना चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। ये तो चैलेंज की बात हुई।
दूसरा है कंट्रोल।
कंट्रोल,
कंट्रोल का यह मतलब नहीं कि किसको कंट्रोल करो, कंट्रोल का यह अर्थ है कि यह सोचो कि मेरे कंट्रोल में क्या है। जब भी कोई समस्या आती है, कई चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती है और कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में है।
स्पष्ट करना
चाहूंगा, हाँ जी हाँ, एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा कि कैसे बहुत अच्छी तरह से अगर जो कंट्रोल में है वो आप करेंगे तो एक तो आपको समस्या के बारे में सोचने का समय नहीं होता है, जिसके कारण तनाव की नेगेटिव इफेक्ट नहीं होती है, और दूसरा कि उल्टा हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलता है। बहुत अच्छा उदाहरण है प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस का
जी। बिल्कुल,
जिन्हें कई समय पहले ऐसी डिस्ट्रॉफिक बीमारी हुई कि जिसमें सारे शरीर के अंगों को लकवा हो गया
जी।
कई बार न्यूज़पेपर में भी आया है, हमारे दर्शकों ने उनका फोटो भी देखा
होगा,
ऐसे एकदम बच्चे जैसे है ऐसा फोटो है, कि जो बोलने के लिए उनको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना पड़ता है। फिर भी यह सोचना चाहिए कि भी ऐसी बीमारी मुझे आ जाए तो क्या होगा। एक आम व्यक्ति तो एकदम निराश हो जाएगा कि भी जीना ही नहीं, अभी क्या करूं, ऐसा सारे शरीर को लकवा हो गया। तो स्टीफन हॉकिंस हारे नहीं, जो एक अच्छी बात थी इतनी बड़ी बीमारी के अंदर,
आज दुनिया में सबके समक्ष एक उदाहरण
है कि उनकी उंगलियां काम कर रही है और दिमाग बिल्कुल स्वस्थ है, दिमाग को कोई चोट नहीं लगी है
जी।
तो कंप्यूटर पर वो अपनी ही थियोरीज को रिवाइज करते हैं ब्लैक होल्स के बारे में उन्होंने अच्छा सा काम किया है
जी।
तो आज हम उन्हें ज्यादा सम्मान देते हैं। भारत में भी कई बार आए, एक बार जब भारत में आए तो एशियन एज में फ्रंट पेज हेडलाइन थी, हीरो नंबर वन प्रोफेसर
हॉकिंस।
तो मैंने सोचा देखो अगर यही व्यक्ति, उसको ये बीमारी नहीं होती, ऐसे कई साइंटिस्ट हमारे देश में आए लेकिन इतना सम्मान उनको नहीं मिलता,
नहीं
है
मिलता।
क्योंकि ये बीमारी, जैसे हमने देखा भी है कि भाई बंबई में भी कई बार हुआ है कि भाई एक बार लड़का फर्स्ट आ गया कि जो जोगेश्वरी में झुग्गी झोपड़ी में रहता था, तो लोगों ने उसे बहुत सम्मान दिया कि देखो समस्या के बीच में इतना अच्छा काम कर लिया। तो टू थिंग्स अंडर कंट्रोल,
वही है कि मतलब चूजिंग और मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट,
व्हाट इज अवेलेबल
आपकी अपनी कैपेबिलिटीज, और ये आपके दृष्टिकोण पर भी डिपेंड करता है।
हाँ,
क्योंकि मैं समझता हूं कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव रास्ता जरूर होता है, उसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर होता है। आप उसको कैच करके या उसको होल्ड करके उस सिचुएशन में जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल आपको बताऊं कि हम लोग ऑपरेशंस कई बार करते हैं, तो ऑपरेशंस हार्ट के करते करते हम देखते हैं कि कई बार पेशेंट को नुकसान हो रहा होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अपने मन को शांत रखते हुए उसमें हमें अपने जो उसमें लूप होल है उसको एकदम पकड़ते हुए बड़ी तेजी से एक्ट करना पड़ता है, और हम पेशेंट को बड़ी इजीली बाहर भी निकाल लाते हैं, क्योंकि किस तरह बिहेव करता है हर व्यक्ति या हर परिस्थिति है वेरी करता है। आप भी जानते हैं, आप एक साइकोथेरेपिस्ट रहे हैं, कई बार ऐसे होपलेस केसेस आपके पास आते होंगे, उसमें भी आप होप जगा देते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। ये तो एक अपने आप में एक एग्जांपल होता
है। बहुत अच्छा, वो बताना ही चाहिए कि भी आशा को कभी भी गवाओ ना,
जब होप है लाइफ में तभी लाइफ चलती है।
होप के लिए बहुत अच्छा कहा गया है कि भी होप जो है वह गांव के रास्ते जैसा है। गांव में जब एक व्यक्ति चलता है एक रास्ते पे तो उसके ऊपर लोग चलते जाते एक आध साल में रास्ता बन जाता है। तो होप भी ऐसी ही वस्तु है।
तो डॉक्टर साहब, चैलेंज हुआ, कंट्रोल हुआ, तीसरी चीज,
तीसरा है कम्युनिकेशन कि जीवन आज हमारा है वो प्रेशर कुकर जैसा है।
बिल्कुल,
जैसे नहीं प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता है तो सेफ्टी वाल्व ऑन हो
जाता है,
लेकिन हमारे जीवन में कोई सेफ्टी वाल्व नहीं है, हमें बीमारियां हो जाती है। जरूर परमात्मा ने सेफ्टी वाल दिया, इसका उपयोग करना चाहिए, वह है कम्युनिकेशन कि जब भी समस्या आए कोई एक व्यक्ति भी जो आपके साथ सिंपैथेटिक है उसको दिल की बात सुना दो
जी।
कभी बहुत ज्यादा दुख आए, बहुत समस्या आए तो रो लेना भी अच्छा है, पर बार बार नहीं रोना चाहिए, परंतु एकाध बार 6 मास में कभी आपको सचमुच लगे कि प्रॉब्लम हो रहा है
और आंसू में तो भी, और रोने की जरूरत है क्या अगर व्यक्ति ना मिले तो भगवान के आगे जाके अपने
वो भी ठीक है। अगर कोई सुनने वाला नहीं है, कई बार लोग आके मुझे ये भी कहते हैं कि भी आप कहते हैं कम्युनिकेट करो लेकिन किससे करे, घर वाले तो समझते हैं कि भी ये तो टेंशन है, हमेशा बस अपना दुखड़ा ही रो रहा है, ऑफिस में भी कोई तैयार नहीं है।
वैसे डॉक्टर साहब, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि जो दुनिया में सबसे बड़ा साइकोथेरेपिस्ट है वो भगवान है।
बिल्कुल,
और अगर सब लोग भगवान से साइकोथेरेपी लेने लग जाए या उसके आगे रखने चले जाए तो साइकोथेरेपी तो बिल्कुल काम हो जाएगा,
क्योंकि परमात्मा के ड्यूअल बेनिफिट्स
है जी।
कि जो आम व्यक्ति हो तो चलो आपकी बात को सुन लेगा
जी,
और आपको डिस्करेज भी करेगा शायद, करेज नहीं करेगा, परंतु परमात्मा आपको इनकरेज करेगा।
तो डॉक्टर साहब, कम्युनिकेट हुआ और फिर कोऑपरेट।
हाँ जी हाँ, कि जब हम दूसरों को सहयोग देते हैं तो बहुत बड़ा फायदा होता है, कि जब आप सहयोग देते हो तो आपको अपनी चिंता के बारे में सोचने का समय नहीं होता है, और दूसरा फायदा यह होता है जब हम सहयोग देते हैं तब कि हमें यह पता चलता है कि मेरी समस्या बहुत ही छोटी है। किसी को जब हम सहयोग देते हैं उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, तो न केवल हमें, सभी लोग ये सोचते हैं कि देखो कितना अच्छा हुआ।
और वैसे भी कहा गया है कि गुडनेस हैज अ नेचुरल वे ऑफ कमिंग, बट आप किसी के लिए सहयोग करते हैं, अच्छा ही करते हैं, तो वो आपके पास एक
आती
खेल का जो यंत्र होता है वो बूमरैंग की तरह वापस
आता है।
और
पांचवा है वो है कॉन्सेंट्रेशन। लोग मुश्किल भी समझते हैं परंतु उसका एक सहज अवस्था है जिसको मैं कहता हूं एब्सॉर्प्शन, कि उसमें खो जाओ, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जैसे भी स्टूडेंट्स है वो पढ़ रहे हैं, जब टेंशन लेके मेरे पास आते हैं स्टूडेंट, मैं उनको कहता हूं कि पढ़ाई में खो जाओ, देखो तुरंत आपका तनाव खत्म हो जाएगा।
और मैं डॉक्टर ये जरूर कहना चाहूंगा कि कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज में एंजॉयमेंट के साथ ही आती है।
हाँ जी।
क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन आप टेंशन के साथ करेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं आती
है।
तो मैं ये कहूंगा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन कोई करना चाहे तो उसको इंजॉय करे पहले।
हाँ जी।
इसी प्रकार मैं समझता हूँ मेडिटेशन भी होती होगी कि आप इंजॉय करें उस चीज को,
या तो आप जो इंजॉय करने की बात कहते हैं ना, इट इज अ सर्कल। सर, इफ यू डोंट एंजॉय यू कैन
कॉन्सेंट्रेट, या
एंड इफ यू एंजॉय योर कॉन्सेंट्रेशन यू विल
दे आर लिंक्ड
विद, या एंड स्टिल फर्दर यू विल एंजॉय दैट सिचुएशन.
तो दैट्स अ मेडिटेशन.
हाँ, अल्टीमेटली जब भी हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो यही भाव आता है कि भैया कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन मेडिटेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है वह परमात्मा में एकाग्रता है, कि भी परमात्मा में आप खो जाते हैं. और जब परमात्मा की याद में व्यक्ति खो जाता है तो ऑटोमेटिक वो ब्रेक भी लग जाती है जो हमने डिस्कस किया, साथ साथ में सारी बॉडी भी रिलैक्स,
बॉडी रिलैक्स हो जाती है, नेगेटिविटीज का अंत होता चला जाता है.
हाँ.
और मैं समझता हूँ कि जो हमने इतना अच्छा डिस्कशन किया, हम सुन रहे थे, हमारे दर्शक सुन रहे हैं, उनकी भी कितनी स्ट्रेस जो है एकदम मेरे ख्याल से खत्म ही हो गया होगा. हाँ, और समझते हैं, क्योंकि चांस ही नहीं मिलता था हम ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे मेथड्स के बारे में बात
सोचना है. मोहित, ऐसा देखा भी, कहीं मेरे लेक्चर में भी लोग दूसरे दिन आके कहते हो 5C का मैं सारा दिन सोच रहा हूँ, टेंशन नहीं.
डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो आपने देखा कि तनाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग तो बन चुका है, लेकिन हम चाहें तो उसे अपने से भिन्न भी कर सकते हैं. और क्यों ना करें भिन्न, जब हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक 5C अप्रोच भी है. अपने जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसमें उसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करिए, और उस चैलेंज में जो कुछ हमारे कंट्रोल में है उस सिचुएशन में हमें कंट्रोल करना है. अपने मन का बैलेंस रखते हुए कंट्रोल करके अपनी जो परेशानी है अपने मित्रों से, या सबसे बढ़िया परम मित्र आपका भगवान, उससे आप शेयर करिए. और जब हम यह करते हैं तो भगवान हमें स्वतः ही कोऑपरेशन देता है. हमें ना केवल भगवान से कोऑपरेशन लेनी है, लेकिन हर व्यक्ति को, समस्त संसार में हरेक को कोऑपरेशन देनी है. और जब हम यह कर लेते हैं तो हमारी उस परिस्थिति में कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर बन जाती है, और इंजॉय करते हुए सहज तरीके से हमारी नैया, हमारी नाव जो है उस तनावपूर्ण परिस्थिति से पार हो जाती है. यदि आपको कोई प्रश्न हो, कुछ और आप पूछना चाहते हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारा ईमेल है omshantistudio@gmail.com. आप हमें फोन भी कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555. आशा है आपको यह हमारा एपिसोड पसंद आया होगा. हमारे अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार. Shine.